السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 22वां पारा है और हम सूरत अलहज़ाब की आयत नंबर 28 से शुरू करेंगे जो कि पीछे वाले पारे में है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والیوں کے لیے زبردست اجر رکھے ہیں. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی آسان ہے. ان دو آیتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا عنوان کیا بنتا ہے؟ کیا چاہیے، دنیا کی متاع یا اللہ کا رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. انہوں نے ہر دکھ سکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب مشکل پڑتی تو سب سے زیادہ آپ کو ڈھارس اپنے گھر ہی سے ملتی. لیکن کیا ہوا کہ جب غزوہ خیبر ہوا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال عام لوگوں میں تو بانٹ دیا، لیکن آپ کے گھر میں پھر وہی حالت تھی کہ ایک دن چولہا جلتا ہے اور کئی کئی دن تک پھر آگ نہیں جلتی تھی. اس چیز کو دیکھ کے آپ کی بعض بیویوں کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو بات اور تھی، حالات تنگ تھے، مشکل تھی، لیکن اب کیا ہے، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی کچھ دنیا کا مال متاع دل مل جائے اور ہم بھی کچھ آسودگی کے ساتھ جہاں جئیں. تو لہٰذا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مطالبہ رکھا تو آپ کو اس بات پہ رنج ہوا اور آپ نے پھر ان کو اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے، تم دنیا کا مال چاہتی ہو، میں تمہیں دنیا کی جتنی چیز کہو دے کے رخصت کرتا ہوں، لیکن تم پھر نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اور یہ قسم کی بہت بڑی یعنی تمہید تھی اس بات کی کہ وہ عورت جو واقعی کسی دین والے کے ساتھ یا کسی دین کے کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہے، پھر اس کو دنیا کی چیزوں کی طرف صرف رنگ اور روپ اور رونق کے لیے ہی نظریں نہیں اٹھانی. آپ نے بیویوں کو اختیار دیا، آپ کی بیویوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ چاہیے. آپ نے ان کو پورا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے اس بارے میں مشورہ کر لیں، اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں، لیکن سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے معاملے میں کسی اور سے مشورہ کروں گی؟ ماں باپ کسی تک بات نہیں لے کے گئیں اور اچھی عورتوں کی طرح، اچھی بیویوں کی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہیں. اس میں بہت سارے سبق ہیں ہم سب کے لیے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین تھیں، مدرس آف دی بلیورس تھیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو کر کے دکھایا، آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو چونکہ نبی کی بیویاں تھیں، بلکہ جس طرح اللہ کے نبی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اسوہ حسنہ ہیں. تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز تو کہہ کہ ہمیں ہر ممکن حد تک ان کی زندگی کے اندر اپنے لیے عمل کی باتیں ڈھونڈنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ تمہیں دنیا کی اچھی چیزیں دے کے پھر رخصت کر دوں، تو इससे एक इंसान और एक औरत को जिंदगी में कई दफ़े ऐसे मामले उसके सामने आते हैं कि एक तरफ अल्लाह का रसूल या अल्लाह का दीन का कोई फैसला हो सकता है और दूसरी तरफ दुनिया का कोई मता। तो एक अच्छी औरत की पहचान क्या है कि वो ऐसे वक्त में अल्लाह के दीन को मुंतखब करेगी। और इसी तरह से फिर ये बात भी पता चली कि जब इंसान किसी एक खास मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर उनकी जैसे मुकाम उनका बढ़ जाता है, इसी तरह गुनाह पे या उनकी किसी यानी गलत हरकत पे उनको अजाब भी दुगना होता है। तो लिहाजा हर वो बंदा जो किसी भी जगह अपने आप को नुमाया मुकाम पे महसूस करता है कि लोग उस पे नजर रखते हैं, तो फिर उसको ऐसी बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ती हैं जो दूसरे लोगों के लिए वो जायज हो सकती हैं। दुनिया का माल हराम नहीं था, दूसरी औरतों को मिला, आपको भी मिल सकता था, लेकिन हकीकत क्या है कि जब दुनिया की बहुत आसाइशें जिंदगी में आने लगती हैं तो उसके बाद फिर उस काम के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हलल पड़ता है। आगे चलते हैं, मामला उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। नबी की बीवियों के हवाले से अब कुछ आगे और बातें। वमई यकनुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा, और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, इसे हम अजर भी दोहरा देंगे और इसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नर्म लहजे से बात ना करो, और जिसके दिल में रोक हो वो कोई बुरा ख्याल ना करने लग जाए। हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो। वक़र नफी बुयूती कुन वला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाव सिंगार का इजहार न करो, और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करो। अल्लाह यही चाहता है कि ए नबी की घरवालियों, तुम में से हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। वस्कुर नमा युतला फी बुयूति कुन मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं इनका जिक्र करती रहो। यकीनन अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला और खबरदार है। ये है पहला रुकू 22वें पारे का। इसका उन्वान क्या है? बाजार जरूर जाऊंगी। और यही है आज की हमारी किताब का नाम भी, बाजार जरूर जाऊंगी। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के किरदार को सामने रखते हुए कुछ बातें हमें समझ में आई। कौन कौन सी? पहली बात क्या है कि अज़वाजे मुतहरात का मुकाम आम औरतों से बुलंद है, लेकिन तकवे की शर्त के साथ। और दूसरी बात मालूम हुई कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगी कोई भी औरत, और उसको अजर मिलेगा, और ऐसी खवातीन को दोहरा अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके अमल को देख के जब दूसरे लोग भी अमल करेंगे तो ये भी इन्हीं के नामे अमाल में जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले बैत की पाकीज़गी के 9 बातें हमें बताई। अहले बैत से यहाँ नबी सल्लम के घर वाले मुराद हैं, यानी आपकी बीवियाँ, आपकी बेटियाँ, और उसमें फिर उम्मत की हर औरत भी शामिल हो जाती है। कौन कौन सी बात? पहला अदब क्या सिखाया? कि दबी जुबान से बात ना करो, यानी किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत हो तो तुम्हारी आवाज़ में लोच ना हो, साफ और सीधी बात करो, अपने घरों में वक्कार के साथ रहो, और दौरे जाहिलियत की तरह सजदज करके लोगों को दिखाती न फिरो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह ताला की आयतें और हिकमत की बातें जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं इनके ऊपर इसको याद रखो, और फिर ऐसी आयतों और हिकमत की बातों को दूसरों के साथ बयान करो। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुसलमान औरत को एक एजेंडा दे दिया, अपने दिल को पाक करने का भी, अपने घर को पाक करने का भी, और अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा खूबसूरत तरीका लाने का कि जिसकी वजह से उसके साथ मामला जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। हम अगर अपने तनाजर में इस रुकू को देखें तो पहली बात क्या है इसमें कि जिस तरह नबी की बीवियों का मुकाम दूसरी औरतों से आला था, इसी तरह इल्म हासिल कर लेने वाली खवातीन का मुकाम आम औरतों से बुलंद होता है। क्योंकि हर दौर के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, उस दौर में अज़वाज मुतहरात और सहाबियात थी, इसी तरह आज के दौर में वो खवातीन जो दीन से मुंसलिक हो जाती हैं, लोगों में शोहरत होती है कि ये दरसों में जाती हैं, ये क्लासेस लेती हैं या ये पढ़ाती हैं, तो लोग फिर उनको भी इसी नज़र से देखते हैं कि इनका ज़रूर ही अमल हमसे बुलंद होना चाहिए। लेकिन जब लोग हमारा अमल अपने से फ़र्क नहीं देखते तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है लोगों को दीन से दूर करने की, कि पढ़ने के बाद भी अगर ये ऐसे हैं तो फिर हम बिन पढ़े अच्छे। तो लिहाजा हर एक को अपनी जिम्मेदारी को समझना है इसके अंदर, और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि कहीं हमारा एक गलत कदम दूसरों को भी गलत तरफ ना ले जाए। शायद आपने कभी देखा हो कि एक तो वो होता है कि हर औरत या हर इंसान अपनी गाड़ी चला के खुद जा रहा है, हो सकता है वो रास्ता भूल जाए, भटका, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, भटक गया, वक्त फिर आ जाएगा। लेकिन आप उस मिसाल को जहन में रखिए कि जब कोई किसी को रास्ता दिखा रहा हो और उसके पीछे तीन चार गाड़ियां उसको फॉलो कर रही हो, क्या होता है? नुकसान बढ़ जाता है ना। पहले तो खुद भटके थे, अब आपके पीछे 10 गाड़ियों वाले भटक गए। एक तो आपको भटकने का गम, वक्त की कमी का एहसास, और एक शर्मिंदगी का एहसास क्या होता है कि इतनों को मैंने भटका दिया। बिल्कुल अगर ज़िंदगी में ये याद रखें कि दीन से मुंसलिक लोग जो हैं ऐसे ही संगे मील होते हैं, कहाँ भी जाएंगे वो सिर्फ कुरान की क्लासों में आके लोग उनको नहीं देखते, लोग उनको पार्टियों में भी देखते हैं, लोग उनको इफ्तारियों के मौके पे देखते हैं, उनके मामलात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए देखते हैं कि ये उठते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये बात कैसे कर रहे हैं, ये खाते कैसे हैं, ये सुनते कैसे हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में अगर इंसान अल्लाह का शुक्र करते हुए कि उसने हमें इस दर्जे पे पहुंचाया, क्योंकि अगर वो इंसान अच्छा काम करता है तो फिर दूसरे उसको देख के अच्छा काम भी करेंगे, फिर उसका अजर भी ले जाता है। फिर आप सिर्फ कुरान की क्लास में बैठ के अजर नहीं कमा रहे होते, बल्कि आप अपनी महफिलों में भी अजर कमा रहे होते हैं जब लोग आपको देख के अमल कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जिम्मेदारी का एहसास हमने रखना है। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें हमें बात मालूम हुई वो क्या है कि कोई भी औरत अगर ज़रूरत पड़े तो गैर मर्द से बात कर सकती है। नबी सल्लम के बाद आपके अज़वाज मुतहरात जो हैं वो इल्म का एक सोर्स थी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने तकरीबन नस सदी तक यानी इल्म मतलब लोगों को दिया, और आप सिर्फ आप फ़ायदा लेने वालों में सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी थे। बाज़ दफ़ा कुछ निजी मसाइल के लिए ख़वातीन के मसाइल जो होते हैं लोग पूछते थे तो इजाज़त दी गई, ये नहीं कहा गया कि औरत बात नहीं कर सकती गैर मर्द से। हाँ, बात क्या की गई कि वकुलना कौलम मारूफा। तो पहली बात क्या है कि मर्द से बात करने के अदब अदाब क्या हैं, मारूफ बात होगी, सीधी सीधी बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी, लहजे के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसी नरमी होगी कि जिससे अगला बंदा बेतकल्लफ हो जाए, और ना इतनी सख्ती हो कि अगला बंदा आपको ये सोचे कि आप उस पर हुक्म चला रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल अंदाज हो, और बिल्कुल उसके अंदर ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए कि आप इंटरेक्टिव हो गए। मिसाल है कि अब एक औरत है और वो कहे कि चले आए मेरे सामने बैठे मर्द और फिर मैं उनको पढ़ाने शुरू करती हूँ, तो उसमें लिबास और हिजाब और वो सारी पाबंदियों को भी आप हटा दें। तो बहरहाल इससे एक चीज़ जो समझ में आती है वो क्या है कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसी बात हो सकती है, लेकिन इससे ये फिर बात नहीं निकलती कि फिर औरत मर्दों को अपने गाने भी सुना सकती है और उसको फिर अपने लोच भी दिखा सकती है। अगली चीज़ जो इसमें बड़ी ही अहम है वो क्या है, आयत नंबर 33 के नाते से, और वो क्या है कि घरों में करार पकड़ो। औरत का असल मुकाम उसका घर है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी, बुखारी की रिवायत है, कि तुम अपनी ज़रूरियात के तहत से घरों से निकल सकती हो। लेकिन घर से निकलना इंसान औरत का किसी मकसद के तहत, तो कुछ पाबंदियाँ कुछ शराइत लिखाना चाहूँगी कि क्या औरत घर से नहीं निकल सकती? निकल सकती है, लेकिन चंद शराइत हैं। पहली बात क्या है कि ज़रूरत हो, ये बहुत बड़ी बात है। बुखारी की रिवायत है कि कोई औरत ज़रूर मतलब घर से ज़रूरत के तहत निकल सकती है, और वो ज़रूरत कोई भी हो सकती है, आपका अपने माँ बाप को मिलने जाना, हज के लिए जाना, मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाना, कोई भी जायज़ ज़रूरत, अगर आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं उसके लिए, आपकी कोई ज़रूरत है, आपके घर में आपके बच्चे मुंतज़िर हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा हर इंसान देख सकता है कि ज़रूरत कितनी है और क्या ये ज़रूरत सिर्फ मेरे ही ज़रिए से पूरी हो सकती है। इसके अलावा बग़ैर ज़रूरत के सिर्फ मारे मारे फिरना विंडो वॉचिंग के लिए और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या इस तरह की करना, ये औरत का मुकाम नहीं है। क्योंकि आप इसको मैं इस तरह समझती हूँ कि जैसे घर के अंदर हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, बर्तनों की जगह क्या है उसका आपका किचन, कैबिनेट्स हैं। इसी तरह आप देखिए कि आपके कमरे में अगर आपके कपड़े हैं तो उनका मुकाम क्या है, आपकी वार्डरोब। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें वक्त ज़रूरत के तहत इधर उधर नहीं होती? होती हैं। आपके बर्तन अलमारियों से निकलते हैं, आपकी डाइनिंग टेबल पे आते हैं, खाते हैं, लेकिन सबसे पहली फिक्र क्या लगती है खाना खाते ही, कि अब जल्दी इनको उठाया जाए, धोया जाए और साफ करके कैबिनेट में लगा दिया जाए। क्या साबित हुआ? कि बर्तनों के करार पकड़ने की जगह आपकी कैबिनेट है। इसी तरह हर चीज़, और अगर हम देखें तो हर खातून हर रोज़ सुबह 1 घंटा 1.5 जो लगाती हैं तो वो घर की चीज़ों को अपनी जगह पर लगाती हैं। बिल्कुल अगर यही असूल जहन में औरत भी रख ले कि जिस तरह वो कैबिनेट में जाएगा, वो वार्डरोब में जाएगा, इस तरह मेरा असल ठिकाना क्या है, मेरा घर। मैं जरूरत के लिए जाऊंगी, मिसप्लेस होंगी, लेकिन वापस घर, मैं इधर गई वापस घर। औरत कहीं भी रहे उसका दिल अपने घर में लगा रहे, क्योंकि जब औरत घर से गाफिल हो जाती है ना तो वो घर घर नहीं रहता, वो टूट जाता है और उसके ऊपर एक होल्ड नहीं रहता। तो लिहाजा बिला जरूरत के फिरना और करना, इसी पे ये किताब है। इस पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बात की है कि बाजार जरूर जाऊंगी, ये उन औरतों के हाल पे एक वाकई तबसरा है कि जो सिर्फ बाजारों में घूमने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती हैं। अफसोस की बात है कि आज के दौर में जितनी इस्लाम को मुसलमान माओं की जरूरत है, जितनी पढ़ी लिखी खवातीन की इस वक्त जरूरत है, शायद पहले इतनी ना थी, लेकिन उतनी ही औरतें इल्म की महफिलों में पूछें तो जाना मुश्किल लगता है, बैठना मुश्किल लगता है। लेकिन शादियों की बात तो छोड़ें, बाजारों और घूमने में बिला मकसद भी जाने को तैयार हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को सामने रखना है। फिर दूसरी चीज़ औरत के बाहर निकलने की क्या है, कि अगर वो बाहर जाती है तो फिर अपने शौहर की इजाजत से जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। एक तो होती है इजाजत आराम से दी हुई है, शौहरों को बीवियों पे एतमाद है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक औरत कहीं जाए और शौहर से झूठ बोल के जाए या छुपा के जाए, इल्ला कोई बहुत ही इस्तेसनाई शक्ल हो सकती है, मर्द मना करता है किसी ऐसी जगह जाने में, वो ऑप्शनल है। लेकिन आम असूलों में जो तकरीबन 6-7 असूल आपको बताऊंगी, उसमें ये एक असूल है कि शौहर की या जो भी महरम है बाप के घर में है तो उसकी इजाजत से जाए। तीसरी चीज होती है कि उसकी शरई हिजाब में जाए, यानी अपने हुलिये को बदल के और उसके ऊपर करे, और यानी उसका मामला कैसा होना चाहिए वो आगे इंशाल्लाह ताला बात आएगी तो उसमें हम देख लेंगे कि बाहर जाने का एक अदब क्या है, लेकिन अपने जिस्म को अपने आपको छुपाते हुए जाएगी। फिर अगली जो अगला नुकता क्या है कि उसके जिस्म पर कोई ऐसा जेवर ना हो जिसके बचने की आवाज़ आए। सूरत नूर में हम पढ़ चुके, यानी घुंघरू को चूड़ियों की छन छन चल रही है और पीछे से चोटी के अंदर घुंघरू बज रहे हैं, जूड़े के अंदर कोई ऐसी चीज लगी है और लिबास के अंदर अगर घुंघरू लगाएं, तो मुझे तो यही लगता है कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। पहले दौर में तो देखते थे लोग गाय भैंसों के गले में घंटियां डाल देते थे, जहां से चलती थी आवाजें आती थी मालिक को पता चल जाता था कि मेरी मेरी कहाँ है इस वक्त गाय भैंस। औरत क्या देखना चाहती है, कितना को नुमाया करना चाहती है। फिर अगला अगला इसका अदब क्या है कि औरत के जिस्म पे ऐसी खुशबू ना हो कि जिसका असर दूसरों तक जाए, यानी कि उड़ती हुई खुशबू, परफ्यूम और इस तरह के, मतलब अपने बात खुश इस्तेमाल कर लेना कि औरत से पहले उसकी खुशबू आ जाए। औरत के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जायज़ रखी हैं, लेकिन उसके मतलब घर के अंदर की हद तक। फिर इसी तरह उसके अंदर एक और इसी में मैं ये बात कहूंगी, आप लोगों को शायद फायदा इस बात से हो कि जिस तरह औरत के यानी जिस्म पे आवाज चली कि उस चीज ना हो कि लोग नुमाया ना हो उसको देखे ना, इसी तरह औरत का बाहर सड़कों पे, रोड्स पे, मस्जिदों के बाहर खड़े होके, शादी हॉलों के बाहर खड़े होके ऊंची ऊंची आवाज में बातें करना, हंसी ठट्ठा मजाक, क्या ये इसमें नहीं आता? क्या औरत, क्या आप नहीं देखते कि जहाँ 4 लड़कियां खड़ी हो जाएं घूम के मुड़ के देखना पड़ता है कि हुआ क्या है? यानी औरत की आवाज के अंदर भी हुसन है, इसके अंदर भी लोच है, कितने ही लोगों को हम परेशान करते होंगे अपनी इन हरकतों की वजह से, तो लिहाजा औरत को बहुत ही अदब के साथ बात करनी चाहिए। फिर अगली बात यह है कि औरत बाहर जाएगी लेकिन ऐसी जगहों पे जाने से अपने आप को रोकेगी जहाँ औरत और मर्द का इख्तलात होगा, मखलूत में जगह, जैसे खूब आप कहते हैं मसलन जहाँ मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा के, तो आपने देखा कि खवातीन भी निकली और मर्दों और औरतों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो गया, यानी कुछ मर्द जा रहे हैं कुछ औरतें। आपको ये बात पसंद नहीं आई, आपने मिंबर पे आके फरमाया कि एक साथ नहीं निकलेंगे, मर्द पहले अगर निकलते हैं तो औरतें थोड़ा इंतजार करेंगी, औरतें पहले निकलती हैं तो मर्द इंतजार करेंगे, और आपने औरतों को हुक्म दिया कि तुम गलियों के किनारों पर चलो और मर्द बीच में चलें। ये भी एक किस्म का इस्तियारा था इस बात का कि मर्द जो है वो यानी खुली जगह पे है अगर, तो उसको यानी नुमाया होगा और औरतें साइडों पे होंगी तो वो अपने आप को छुपा लेंगी और उसके लिए आसानी होगी। और सहाबा कहते हैं कि हमने इस हुक्म के उतरने के बाद देखा कि खवातीन इस तरह दीवारों के साथ रगड़ के जाती थी कि उनकी ओढ़नियाँ जो थी ये छिलने लगती थी। इसीलिए तो उनके मुकाम थे। आज क्यों हम अदर्स और बिलीवर्स को लेके बैठते हैं? क्यों बहुत सोचें फिर सोचें कि आज के दौर में कामयाब खवातीन नहीं है? यकीन करें कि जो आज से रात प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मैंने इसके लिए कितने दिन से रिसर्च कर रही हूँ, मैंने इंटरनेट पे देखा कई तरीके कि क्या वेस्ट में कैसे बच्चों की तरबियत की जाए। मैं जो बातें पढ़ती मुझे लगा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन सहाबियात की जिंदगी सुभान अल्लाह, एक वाक्य पढ़ लें कितनी देर तक आपका दिल झूमता रहता है कि असल तो ये माए थी, ये वजह थी कि सुन के बात को मानने वालियां थी। और फिर इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, और लेकिन बहरहाल बुनियादी चीजों में फिर यही आती हैं कि इसके अंदर अगर औरत कहीं दूर जा रही है जहां उसका सफर दूर का है तो फिर महरम उसके साथ भी हो। तो अल्लाह ताला हम सबे हम इसी बात के साथ अपने आप को रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जिस हद तक जिस दर्जे पे इस बात को सुन के मानने वाले बने मान लें। बाज दफा क्या होता है कि हम एक बात मान सकते हैं दूसरी मुश्किल होती है, तो फिर हम एक भी नहीं मानते कि जब हम एक नहीं करते तो दूसरी कैसे करें, तो ये बात दुरुस्त नहीं। चलते जाइए एक एक करके मानेंगे इंशाल्लाह ताला अगली चीज खुद ब खुद आसान हो जाएगी। इसके बाद फिर एक और जिम्मेदारी जो इस आयत नंबर 34 के नाते से हमारे ऊपर रखी गई, और वो क्या है कि कुरान की जो आयतें आप पर पढ़ी जाती हैं उसको दूसरों पर पढ़िए। सहाबियात जो है नबी सल्लम की जो बीवियां हैं उनके नाते से आज हमें भी यही अमल इसमें मिला कि हम जितनी भी दीन की बात सीखते या सिखाते हैं कोशिश करें कि उसको फिर जहां भी आगे मुनासिब तरीके से हम दे सकें तो दें। इसमें लफ्ज़ तबरुज पे बात करना चाहूंगी हल्की सी। अब देखिए कि अभी तक ये तीसरा मौका है कुरान पाक में जहां औरत के लिबास और हिजाब की बात हुई। सबसे पहले सूरत आराफ में हमने देखा लिबास की बात हुई, वो कौन सा लिबास था? अमूमी लिबास था जो औरत औरतों के बीच में पहनती है। फिर सूरत नूर में हमने जो आयात पढ़ी तो वो औरत की घर में रहते हुए महरम, घर के अंदर के महरम और गैर महरम की बात थी। लेकिन अब सूरत अल अहज़ाब में आप देखेंगे कि औरत के घर से बाहर निकलने की बात आगे आएगी, लेकिन यहाँ तबर्रुज क्या कहते हैं? नुमाया होना, बुर्ज कहते हैं बुलंद चीज को। यानी कुछ मुफस्सरीन इस तबर्रुज को कहते हैं कि औरत के का हार और बुंदों को जाहिर करना ये तबर्रुज है। यानी ये मुख्तलिफ लोग हैं, दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि खवातीन जो थी वो सर के ऊपर कपड़ा बांधती और उसको चोटी के पीछे से देख के तो पीछे टाई अप कर देती थी जिससे कान भी खुले रहते और गले का हिस्सा और सीना भी खुलता था। इससे मना किया गया, पीछे भी आप पढ़ चुके कि अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाल दो। तो इससे क्या पता चला कि औरत पहन ओढ़ तो सकती है लेकिन गैर जगहों पर और ऐसी जगहों पर जहाँ फितना है उसका इजहार नहीं कर सकती। फिर इसके बाद एक और चीज़ वो है कि अमूमन हम तो ऐसी चीज़ों को मॉडर्न होने की दलील समझते हैं, मॉडर्न समझते हैं ना ऐसी औरतों को, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। तो बात किसकी सच है? अल्लाह की बात सच है। चलिए आगे चलते हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मोमिनात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदार औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सच सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियां, बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने वसी मगफरत और बड़ा सवाब रखा है। वमा खान अली मोमिन, देखो किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रखता। याद रखो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो सरीख गुमराही में पड़ेगा। याद करो जबकि तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और तूने भी, कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में वो बात छुपाए हुआ था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तू लोगों से खौफ खाता था हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था कि तू इससे डरे। बस जबकि जैद ने इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने लिए पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे, जबकि वो अपनी गरज इनसे पूरी कर ले। अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला है। मा काना अलन नबी मिन हरज, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं इनमें नबी पर कोई हरज नहीं, यही अल्लाह का दस्तूर उनमें भी रहा जो पहले हुए, और अल्लाह के काम अंदाजे पर मुकर्रर किए हुए हैं। ये सब ऐसे थे कि अल्लाह के अहकाम पहुँचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, लोगो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के खत्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का बखूबी इल्म है। ये तरकु नंबर दो, इसका उन्वान क्या है? बेमिसाल मुआशरा। आपने देखा कि रुकू की पहली ही आयत में मिसाली इंसानों की खूबियां बयान की गईं। क्या क्या होती हैं खूबियां? और आपने यहाँ ये भी नोट किया होगा कि औरत और मर्द का अलग अलग जिक्र हुआ। अमूमन बहुत सारी बातें औरत और मर्द को इकट्ठे दी जाती हैं, लेकिन यहाँ मजीद खोल के बात इसलिए कर दी कि कोई औरत ये ना सोचे कि ये बात मेरे लिए नहीं। क्या क्या चीज़ें थी? इस्लाम, ईमान, इताअत, सच्चाई, सब्र, खुशू, सदका, रोज़ा, पाक दामनी और अल्लाह का जिक्र। ये हैं 10 खूबियाँ कि जिस इंसान ने आएगी वो बेमिसाल हो जाएगा, वो औरत हो या मर्द हो। हम सबको अपना हिसाब करना है, अपना जायज़ा लेना है, क्या मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं? कौन है जो हम में से बेमिसाल नहीं बनना चाहता? याद रखिए हर बच्चे के अंदर भी ये हिस मौजूद है कि वो अपने आप को दूसरों से नुमाया करना चाहता है। अल्लाह ताला ने इन जज्बों को कैद नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, इनका रुख बदल दिया कि वाकई तुम अच्छा बनने चाहते हो, तुम नेकियों में अच्छे बन जाओ, तुम चाहते हो लोग तुम्हारे पीछे चलें, अच्छे कामों में पीछे लगा लो। अपना हिसाब लेना है हमने कि अगर मेरे अंदर ये बातें नहीं हैं तो फिर मैं बेमिसाल नहीं हो सकती। आज दुनिया में लोग चूज़ किए जाते हैं, कुछ ख्वातीन को चूज़ किया जाता है, कोई मिस वर्ल्ड बन जाती हैं, कोई मिस सिटी बन जाती हैं, कुछ इसी तरह के टाइटल्स हैं, किसी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिल जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अवार्ड किसको मिलेगा जो अपने अंदर ये 10 बातें करेगा? तो लिहाजा हर वो बंदा जो वाकई इस दुनिया में भी बेमिसाल होना चाहे, बेनज़ीर होना चाहे और आखिरत में भी, तो उसको अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद अगले हिस्से में इस्लामी मुआशरे के बुनियादी असूल बताए गए, क्योंकि इस्लामी मुआशरा भी बेमिसाल मुआशरा वही होता है। 3 बातें बताई गईं। नंबर 1, नेक आमाल में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, ये नहीं हो सकता कि औरत को कम अजर मिले और मर्द को ज़्यादा। दूसरी बात, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो किसी को इख्तियार नहीं कि खुद फैसला अपना करे। और तीसरी बात है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। अगर इसकी रोशनी में अगर हम अपने आप को साथ साथ देखते जाएं तो आज के दौर में ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पेश की जाती है कि औरत को इख्तियार नहीं दिया गया। जब लोग पूछते हैं कि क्या औरत की नमाज में ये चीज़ फ़र्क है, मर्द की फ़र्क है, कभी कोई बात, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि क्या औरत के रोजे रखने में और मर्द के रोजा रखने में कोई फर्क है? क्या औरत के ज़कात के निसाब में और मर्द के निसाब में फर्क है? आप बताइए, मुझे जवाब दें, क्या ऐसा है? क्या हज के तरीके में औरत और मर्द के कोई फर्क दिखता है? क्या सदका खैरात करने के कोई असूल फर्क है? कोई चीज ऐसी नहीं, तो फिर सिर्फ नमाज ही क्यों? और जब कहा जाए कि जाहरी सतर और लिबास के अलावा बाकी रुकू, सजू, तस्बीहात, तमाम चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं, तो फिर लोग बुरा क्यों मानते हैं? क्या ये एक फैलाई हुई सोच नहीं सिर्फ, जिसने एक ख़ास खित्ते अर्ज को, लोगों की सोचों को मफलूज कर दिया? यहाँ एक असूल बहुत अच्छी तरह समझ लें कि औरत और मर्द एक ही जैसे हैं। फ़र्क कि कहाँ है, जहाँ ज़रूरत है, मईशत और माशरत के नाते से। औरत नाजुक तबा है, उसको घर की जिम्मेदारियां दी, घर के मामला तमूमन आसान होते हैं, उसके अंदर नजाकत डाल दी। मर्द के लिए खूबसूरती की चीज़ है तो नजाकत दे दी, उसको हुसन दे दिया, थोड़ी सी काम करके वो थक जाती है। मर्द इसके बरक्स मजबूत और ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनको घर के बाहर के काम दिए, तुम कमाओ तुम खाओ। ये एक जरूरत थी, मर्द बाहर के काम करता है, वो बाहर रहता है तो नहीं थकता, औरत एक दिन बाजार चली जाए तो वो थक जाती है। सिर्फ इतना थोड़ा बहुत फर्क है। फिर एक आपने सूरह नूर में देखा कि मर्दों को कहा गया यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, औरत को भी कहा गया यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन और यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन। ये दो बातें बराबर हैं, बस मर्द को खामोश किया लेकिन औरत को साथ ही कह दिया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। क्यों? कि औरत में खूबसूरती है। अब मर्द अगर बेचारे निकाब पहन भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या किसी मर्द के चेहरे में वो कशिश है जो औरतों की होती है? ये बात अलग है कि फिर कुछ लोग उनको भी औरतों के रूप में देखना चाहें और उसको आइडियल करें, तो बहरहाल औरत और मर्द बराबर हैं। अगली चीज इसमें हमने जो देखी इस रुकू में वो क्या है कि इस्लामी माशरे में क्या असूल हैं कि जिसकी बुनियाद पे रवाबित कायम किए जाएं। यहाँ पहली बात हमें पता चली कि मुतबन्नी, ले बालक, एडॉप्टेड, सगा बेटा नहीं होता। दूसरी बात इसमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाते से मालूम हुई। कौन थे? इनकी कहानी थोड़ी सी आपके सामने रखूंगी कि ज़ैद जो थे ये नबी सल्लम के पास एक ग़ुलाम के तौर पे आए थे। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हुई तो हज़रत खदीजा ने तोहफे में आपको हज़रत ज़ैद दिए थे। उस दौर में ये रिवाज होता था कि गिफ्ट में ऐसी चीज़ें दी जाती थी, जैसे आज आपको कोई किचन में काम करने की कोई मशीन देता है गिफ्ट में, तो इसी तरह ग़ुलाम दिए जाते थे कि ये तुम्हारा काम करेंगे। ये उस वक्त की मशीनें थी एक किस्म की, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको महसूस कर लें। नबी सल्लम ने उनको ग़ुलाम रखना पसंद न किया, बल्कि आपने उसको कुछ अरसे के बाद आपने उनको आज़ाद किया और कहा आज से ज़ैद मेरा बेटा है। अब जब आपने उनको बेटा कहा तो उस दौर के रिवाज के मुताबिक आप उनके बेटे बन गए, लेकिन थे ले पालक बेटे। थोड़ी देर जब बड़े हुए, कुछ मामला हुआ, तो नबी सल्लम ने, जैसे बेटे की एक फिक्र होती है, इनका निकाह अपनी फुफीजाद बहन जो थी हज़रत ज़ैनब से कर दिया, यानी नबी सल्लम की कज़न थी, उनको पैगाम दिया। अब वो कुरैश से थी, ज़ैद हकीकत में ग़ुलाम नहीं थे। ये भी आपको बताऊँ, इनकी बहुत पीछे की कहानी कभी आपको सुनाऊंगी कि ये असल में गुम गए थे। जैसे बच्चे अगवा हो जाते हैं तो किसी के हाथ में लगे तो उन्होंने खरीद के इनको बना दिया, नस्लन ग़ुलाम नहीं थे ये, लेकिन बहरहाल ग़ुलामी का ठप्पा था। तो हज़रत ज़ैनब के दिल में थोड़ा सा मलाल आया कि ग़ुलाम से मैं शादी करूँ, लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लम की बात को टाल नहीं सकी और उस पर मान गई। तो अल्लाह ताला ने फिर नबी सल्लम ने उनके साथ उनका निकाह करवा दिया। लेकिन मिजाज का फ़र्क था, सोच का फ़र्क था। एक साल तो बनी, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि ये दोनों साथ नहीं रह सके। हज़रत ज़ैद ने कहा कि अल्लाह के नबी, उनको अपनी वजाहत, ख़ानदानी बात होने का बड़ा मेसपन है। और याद रखिए, कोई मर्द भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर अपर हैंड रखे। अगर कोई हर वक्त औरत अपने मैके की खूबियां करती रहे, हम वहां से आए, हम यहाँ से थे, हमारी ये खूबी, हो सकता है हंसी मजाक में एक दो बार वो समझ ले सुन ले, लेकिन किसी वक्त बहुत जबरदस्त हादसा हो सकता है इस बात के नतीजे में। वो तो ऐसी है जैसे किसी सोए हुए शेर की गैरत को जगाने वाली बात। तो लिहाजा औरत को बहुत मुहतात होना चाहिए। तो बहरहाल नबी सल्लम ने अब साथ रह के अगर एक दूसरे के हक नहीं दे रहे, कुफर कर रहे हैं, ना शुक्री कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अलग कर दिया जाए। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आजमाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने वाली थी, और वो क्या थी कि जब जैद ने हजरत जैनब को तलाक दी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब जैनब जो है वो आपके निकाह में आएंगी। असलन तो कोई मना नहीं था, आपकी फूफीजाद बहन थी, लेकिन चूंकि आपके मुंह बोले बेटे की बीवी रह चुकी थी, तो उस दौर में ये बात बहुत ही मायूब थी। जैसे अल्लाह के नबी सल्लम की इजाज़त, दूसरे रस्म व रिवाज बदले, टूटे कुछ कानून, इस तरह ये रस्म भी तोड़नी थी कि मुतबन्नी के बेटा जो बीवी है उससे निकाह हो सकता है, वो बहू नहीं है। अब नबियों को बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें लाई गई, इस तरह ये आजमाइश नबी पे आ गई, तो नबी सल्लम जो थे वो इसमें बहुत ही हिचकिचा रहे थे कि क्या होगा, लोग बातें करेंगे, क्या कहेंगे, अपनी बहू से निकाह कर लिया। तो अल्लाह ताला ने इसमें आपकी जहन साजी की कि लोगों से मत डरिए, अल्लाह से डरिए, और अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है इस चीज़ का। और आपको मालूम है कि फिर हजरत इनका निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पे खुद कर दिया था, दुनिया में इनका निकाह नहीं हुआ। ये अपनी इस बात पे फख्र किया करती थी। हजरत आयशा जब कहा करती थी कि मेरे बारे में कुरान पाक में 10 आयतें नाजिल हुई, मैं तुम लोगों से नुमाया हूँ, जैसे आपस में औरतें बातें करती हैं कभी, तो ये कहा करती थी। बल्कि हजरत आयशा के बारे में आता है कि उनकी तस्वीर, उनकी शबीह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सल्लम को दिखाते थे। हदीस बुखारी की के जिब्राइल आए और सब्ज रेशम में लिपटी हुई उन्होंने मुझे आयशा की तस्वीर दिखाई, यानी आयशा शुरू से पास ही थी। आप कोई दिन ऐसा नहीं था कि नबी सल्लम हजरत अबू बकर के घर में नहीं जाते थे, लेकिन इशारतन आपको बता दिया गया था कि इनसे आपकी शादी होगी। तो ये इस पर फख्र करती थी। तो हजरत जैनब कहा करती थी कि मेरा तो निकाह आसमान पे हुआ, यानी अल्लाह ताला कहते हैं हमने कर दिया तुम्हारा निकाह उससे, जवज ना कहा, हमने तेरा निकाह उससे कर दिया। तो ये एक उनकी खास बात थी। तो बहरहाल इसमें हमारे लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं सीखने की। पहली बात क्या है कि अल्लाह के हुक्म को मानना है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। आज हमारे यहाँ भी इस बात को सुन के कई लोग सोच में पड़े होंगे कि अच्छा फुलान ने तो फुलान बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है, तो क्या फिर वो उनका बेटा नहीं है? नहीं है, लेकिन ठीक है, आप एहसान कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, आप उससे रखिए लेन देन, लेकिन शरई तकाजे जो हैं वो तो बहरहाल उसमें मौजूद होंगे। फिर दूसरी बात इसमें हमें क्या पता चली कि इंसान को लोगों का डर नहीं रखना, अल्लाह का खौफ रखना है। तीसरी बात पता चली कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिसको इंसान कबूल नहीं कर सकता, मुश्किल लगता है, लेकिन फिर उसको करना पड़ता है। और आप देखिए कि बहुत प्रोपेगंडा हुआ इस पे, फिर लोगों को बातें करना पड़ी, ख़ास तौर पे दीन वालों की छोटी सी बात भी लोगों को बहुत बड़ी होके लगती है। तो लिहाजा हमारा अमल इसमें क्या होना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी कोई बात अनयूजल सुने, बाज़ दफ़ा आप सोच सकते हैं कुछ चीज़ें शरण जायज़ होती हैं लेकिन उस माशरे के रंग रूप के हिसाब से वो दुरुस्त नहीं महसूस होती, तो हमेशा अपनी ज़ुबान को खोलने से पहले ये सोचना है कि असल हुक्म क्या है और मेरा इस मामले में कोई दखल नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मसलन मैं देख मिसाल दूंगी आपको कि जैसे इस्लाम में एक हुक्म है, और वो क्या, नबी सल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को फरमाया था कि तीन कामों में देर ना करो। नंबर एक, फर्ज नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज की अदायगी में, और दूसरा क्या है कि जब कोई मर जाए तो उसके दफन में, क्योंकि अगर वो नेक है तो उसको जल्दी से उसके ठिकाने पे पहुंचाओ, और अगर वो बुरा है तो डरो कि कहीं उसके हिस्से का अजाब तुम्हारे आंगन में ही ना आ जाए, कि यही ना अजाब आ जाए। और तीसरी बात क्या है कि वो मर्द या वो औरत जिसका जोड़ ना रहे, यानी मर गया शौहर या तलाक हो गई, यानी शौहर दीदा बोलते हैं इसको, ऐसी औरत को, तो उसके दूसरे निकाह में, बीवी मरती है तो उसकी फौतीदगी का 3 दिन शोक के गुजारने के बाद चौथे दिन निकाह कर सकता है, और औरत 4 माह 10 दिन अगर आम हालात हैं तो उसके बाद निकाह कर सकती है। अब आज देखिए कि हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें कितने ही लोग ऐसे अकेले हैं, ये वो उम्र के हिस्से होते हैं जहाँ इंसान तनहा नहीं रह सकता, लेकिन वो क्यों नहीं शादी कर पाते, वो दुआ नहीं करवा सकते, वो लोगों के सामने जिक्र नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे, कितने गुस्ताखाना किस्म के जुमले फिर हम बोलते हैं कि इस उम्र में शादी की जरूरत थी। क्या शादी सिर्फ एक ही चीज का नाम है? क्या दोस्त नहीं होते? क्या एक दूसरे के साथ दुख सुख के नहीं होते? एक बंदा रात को तन्हा हो उसको 10 दफा ख्याल आएगा कि अगर अभी मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन पूछेगा। तो क्या शौहर और बीवी, क्या ऐसी चीजों को आम करने की जरूरत नहीं? क्या कुरान पढ़ने वालों का मिजाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मुआशरे में ऐसी कोई बात हो तो अप्रिशिएट किया करें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे पूरी कोशिश करती हूँ, कभी पता चलता है किसी की अनयूजल शादी हुई है अब 4 साल की उम्र में, चाहे मैं सबसे ज्यादा उनको खुशी से मुबारक देती हूँ कि नहीं बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कोई दूसरी शादी कर लेता है, कोई मर्द करता है, वो छुपता रहता है, वो लोग बातें करते रहते हैं उसके खिलाफ, और वो गरीब शर्मिंदा बैठा है। क्यों? अगर हम मुसलमान हैं, अगर अल्लाह के दीन को कबूल करते हैं, तो उसकी सही जात को भी कबूल करें। हम ये कबूल कर लेते हैं एक मर्द के किसी 10 औरतों से गंदे ताल्लुकात रहे, और पता चल जाए शादी हो गई तो कहते हैं अब मेरी बेटी उसके घर में नहीं रह सकती। क्यों? अब उसने तो शादी भी दूसरी कर ली। कितना एक जाहिलाना किस्म का तसव्वुर है कि आप किसी को गुनाह पे तो मजबूर करते हो शादी। और इसी वजह से बहुत सारे लोग गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं कि छोड़ो नहीं तो फिर ना सही। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें बेमिसाल माशरे कायम करने में हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपना हिस्सा डाल सकें। और इसी आयत से फिर नबी सल्लम के खातिम और रसूल होने का भी पता चला। खातिम सील को कहते हैं, स्टैम्प को नहीं। यानी नबी सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद अगर किसी ने नबूवत का दावा किया था या करेगा तो वो दावा झूठा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे तो वो नबी बन के नहीं बल्कि उम्मती बन के आएंगे, या वो पुराने नबी जो बनी इसराइल के थे उसी की एक कंटिन्यूशन होगी।